नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे। ओमान के सुल्तान के साथ कल वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बनने के लिए भारत और इथियोपिया को एकजुट होना चाहिए। इथियोपिया की दो दिन की सफल यात्रा संपन्न। भारत ने बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्ला को तलब किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी, कहा यदि शांति वार्ता विफल रही तो रूस यूक्रेन में अपना क्षेत्र और विस्तारित करेगा। और लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा 2020 क्रिकेट मैच कोहरे के कारण रद्द। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज दो दिन के दौरे पर ओमान पहुंचे। जॉर्डन और इथियोपिया की सफल यात्राओं के बाद प्रधानमंत्री ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे हैं। मस्कत हवाई अड्डे पर रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद सिहाब बिन तारिक अल शहीद ने श्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने भारत ओमान रक्षा सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में मस्कत हवाई अड्डे पर गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद सिहाब बिन तारिक अल शहीद का आभार व्यक्त किया। मस्कत में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका स्वागत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है।
अपने दो दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कल ओमान के सुल्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वह एक बिजनेस फोरम में दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को संबोधित करने के साथ छात्रों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ओमान सल्तनत के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर यहां का दौरा कर रहे हैं। श्री मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय हो रहा है जब भारत और ओमान अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ओमान से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश बाली।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मस्कत में ओमान इंडिया बिजनेस डायलॉग में श्री गोयल ने कहा कि समझौते के बाद दोनों देशों के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा।
Values, traditions, the rich.
भारत और ओमान के बीच साझा मूल्य, परंपराएं और समृद्ध संस्कृति ही हमें कल के इस बेहद यादगार और महत्वपूर्ण दिन तक एक साथ लाने में सहायक रही हैं। कैस और मुझे 17 साल के लंबे अंतराल के बाद ओमान द्वारा किसी देश के साथ पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
After 17 long years.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इथियोपिया एक परिवार के सदस्य हैं और अधिक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व के लिए मिलकर काम करेंगे। इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बनने के लिए भारत और इथियोपिया को एकजुट होना चाहिए।
द ग्लोबल साउथ इज राइटिंग इट्स ओन डेस्टिनी एंड इंडिया एंड इथियोपिया शेयर अ विजन फॉर इट। Our vision is of a world where the global south rises not against anyone, but for everyone.
भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्ला को तलब कर बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के आसपास बनी स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में वहां के चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही झूठी कहानी को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसकी न पूरी जांच की है, न ही इन घटनाओं को लेकर भारत के साथ कोई सार्थक सबूत साझा किए हैं। भारत ने बांग्लादेश में शांति, स्थिरता तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव के प्रति अपना समर्थन दोहराया और वहां के शासन से राजनयिक परिसर में किसी भी खतरे की कार्रवाई को रोकने के लिए कहा। बांग्लादेश में आज राजधानी ढाका में जुलाई ओकिया नाम के एक समूह के मार्च को पुलिस द्वारा रोकने के बाद राजनयिक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां इस समूह ने गुलशन क्षेत्र तक भारतीय उच्चायोग में मार्च निकालने की घोषणा की थी। दक्षिण कोरिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी के निर्माण को संभव बनाने के लिए अमेरिका के साथ एक अलग द्विपक्षीय समझौते पर विचार कर रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वी सुंग लाक ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि उन्होंने ये बात कल वाशिंगटन पहुंचने पर की। लगभग एक महीने पहले अक्टूबर के अंत में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जी ले म्यंग और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूसरे शिखर सम्मेलन में व्यापार और सुरक्षा समझौतों पर एक संयुक्त मसौदे पर सहमति बनी थी। दक्षिणी कोरिया का अमरीका के साथ वर्तमान द्विपक्षीय नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता उसे सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने से रोकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी शांति वार्ता में क्रेमलिन की मांगों को खारिज करते हैं तो रूस यूक्रेन में अपनी बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने और कूटनीतिक तरीकों से संघर्ष की जड़ को खत्म करने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में नाकाम रहता है तो रूस सैन्य तरीकों से अपनी जमीन पर नियंत्रण कर लेगा। पुतिन ने कहा कि रूसी सेना ने पूरी अग्रिम पंक्ति पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मॉस्को रूसी सीमा के साथ एक बफर सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करेगा। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने के प्रयास को छोड़ने की इच्छा जताई है। अगर अमरीका और अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन को नाटो सदस्यों को दी जाने वाली सुरक्षा की गारंटी देते हैं। हालांकि जेलेंस्की ने रूस की उन मांगों को खारिज कर दिया कि वह उन अन्य क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाए जाने जिन पर रूस बलपूर्वक कब्जा नहीं कर पाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से आने और जाने वाले सभी तेल टैंकरों की पूर्ण और व्यापक नाकाबंदी का आदेश दिया है। एक सोशल पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। उन्होंने मादुरो सरकार पर अमरीकी संपत्ति की चोरी का आरोप लगाया है। ट्रंप की टिप्पणी अमरीका द्वारा वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर को जब्त करने के एक सप्ताह बाद आई है। एक बयान में वेनेजुएला सरकार ने ट्रंप की धमकी को खारिज कर दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने मादुरो की सरकार पर आरोप लगाया कि वह चोरी से तेल से प्राप्त धन का इस्तेमाल स्वयं के लिए तथा मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद, मानव तस्करी, हत्या और अपहरण के लिए कर रही है। कांगो के दक्षिणी किवू प्रांत के कई हिस्सों में हुई झड़पों के कारण फिजी और बराका शहरों में सभी मानवीय गतिविधियां निलंबित हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा है कि हिंसा के कारण नागरिक दहशत में हैं। उन्होंने बताया कि हथियारबंद लोगों ने इलाके में लूटपाट भी की है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि 8 दिसंबर से अब तक करीब 110,000 लोग दक्षिणी किवू में जबकि 15,000 लोग बुरुंडी चले गए हैं। भूटान आज अपना 118वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। यह दिन वांगचुक राजवंश के संस्थापक उगेन वांगचुक के वर्ष 1907 में राज्याभिषेक की याद में मनाया जाता है। वांगदेव चोलिंग पैलेस में आयोजित इस समारोह में शाही परिवार के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, बौद्ध भिक्षु और नागरिक शामिल हो रहे हैं। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। पांचवां और आखिरी मुकाबला शुक्रवार को अहमदाबाद में होगा। उपकप्तान शुभमन गिल चोटिल होने के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। चीन के हांगचौ में विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन के लियांग वेई केंग में और वांग चांग को हरा दिया है। पहले गेम में पिछड़ने के बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए दोनों गेम अपने नाम किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे। ओमान के सुल्तान के साथ कल वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बनने के लिए भारत और इथियोपिया को एकजुट होना चाहिए। इथियोपिया की 2 दिन की सफल यात्रा संपन्न। भारत ने बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्ला को तलब किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी, कहा यदि भारतीय शांति वार्ता विफल रही तो रूस यूक्रेन में अपना क्षेत्र विस्तारित करेगा। और लखनऊ में भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच चौथा 2020 क्रिकेट मैच कोहरे के कारण रद्द। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।